एस्ट्रो लाइफ लेकर आए हैं आपके लिए
ग्रहों का खेल
विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जगजीत। महत्वपूर्ण का चुनाव हमारे सामने जानकारियों का महासागर है। सागर की हर एक बूंद दूसरी बूंद के जैसी लगती है, लेकिन कुछ जानकारियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी एक का चुनाव किस प्रकार किया जाए और कैसे बताया जाए कि किसी जानकारी का महत्व कहां पर है, मन के क्षेत्र में आज तक जितने भी काम हुए हैं, मेरे विचार से ये कुछ ऐसी ही बात है। हमारे सामने 10,000 तथ्य है और हर तथ्य अपना कुछ न कुछ महत्व रखता है। अब बिना कोई गलती किए बिल्कुल सही तथ्य को पहचानना है। जी हाँ, एक बार किसी भी तरीके से कोई सही तथ्य को खोज लेने, उसकी ओर इशारा करके यह बताना बहुत आसान होता है कि देखते नहीं, यह तो हमेशा से मौजूद है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों को तो पहले से ही पता था, लेकिन इसको जानने से पहले उपयोग करके देखे। यह निश्चित है कि पुराने लोग नहीं जानते थे, वरना वह उस तथ्य को बाकी तथ्यों से अलग करने का उपाय करते। महत्वपूर्ण का चुनाव इस नए सिद्धांत के आधार पर वह सभी आंकड़े रद्द कर दिए गए जो व्यक्तिगत परीक्षण अथवा खोज पर आधारित नहीं थे। पहले लोगों द्वारा इस विषय पर लापरवाही से किए गए कार्यों को प्रयोग करके अनेक बार सफलता हाथ लगी होगी। इस नतीजे पर पहुंचे कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान होगा कि हम अपनी पूरी इमारत का निर्माण फिर से करें। उस समय स्थिति बहुत निराशाजनक थी और कहीं कोई कामयाबी नहीं दिखाई देती थी। हमने महसूस किया कि अपने अतीत की बहुत सी गलतियों को अनजाने में अपनाया हुआ था और हमारी परियोजना आगे नहीं बढ़ रही थी। सैकड़ों ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में लगता था यह तो सब जानते हैं और जिनका परीक्षण अथवा प्रायोगिक आधार किसी भी तरह से शुभ और अशुभ के रोमन ओमेन प्रतीक से ज्यादा नहीं था। बहुत ही खूबसूरत विचार हैं जिन्होंने भी ये बातें हम तक पहुंचाई हैं, और इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जगजीत जी के साथ। जगजीत जी नमस्कार।
नमस्कार जी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में आपसे, हमारे जो लिसनर्स हैं हमेशा की तरह पूछते हैं कि हॉरोस्कोप के साथ साथ वो अपने साइंस स्टार्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो जगजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप हमें सबसे पहले, जो हमारे लिसनर्स काफी देर से अपने साइंस स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दें।
जी हाँ, जैसा कि स्टार साइन की अगर मैं बात करूँ, राशि की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं मेष यानी कि एरिस राशि के विषय में बताना चाहूंगा। जब भी हम होरोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें मंगल की जो भूमिका रहती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल बद भी माना जाता है। मंगल अगर होरोस्कोप की बात करें तो बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे हिम्मत हौसले को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब भी कुंडली मिलान की जाती है उस वक्त भी जो मंगल की स्थिति है दोनों होरोस्कोप में, वो जरूर देखी जाती है कि ये मंगलिक है या नहीं। और कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि अगर मंगल बुरे ग्रहों के दृष्टि से प्रभावित है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर मंगल केतु से या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनसे प्रभावित रहता है तो उस वक्त भी हेल्थ के काफी इशू रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है हमारे ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। और इससे आगे अगर मैं बात करूं तो मंगल बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो एरीज राशि यानी के मेष राशि के जो भी जातक हैं, अगर अपनी जिंदगी में लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कई बार लाल रंग के कपड़े प्रेफर करते हैं या घर में लाल कलर यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो उनके लिए जो है अच्छा माना जाता है। और दूसरा ये है कि मेष राशि के जातक अगर कभी बिजनेस करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उस वक्त इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कभी पार्टनरशिप करें तो कोई हैंडीकैप जो व्यक्ति है उनके साथ साझेदारी में कोई काम शुरू ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि उस व्यक्ति के साथ इनकी ज्यादा देर जो पार्टनरशिप है वो नहीं चल पाती, कारण कुछ भी रहे, या कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस स्लो हो जाए। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर बिजनेस करना चाहते हो तो खुद करना चाहिए। और दूसरा, इन्हें मीठी वस्तुओं का जो बिजनेस है ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मीठी वस्तुओं का बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि मंगल का जो प्रभाव है जीवन में अच्छा मिलने वाला वो नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि मंगल जो है वो अच्छे ग्रहों से प्रभावित होता है और हम सोचते हैं कि मंगल का हमारी जिंदगी में जो प्रभाव है, मंगल कार्य का प्रभाव है, वो रहना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण रहता है। और दूसरा, जब कभी भी अपने किसी रिलेटिव्स के घर पर जाते हैं तो उपहार में वहां पर अगर अपने साथ मीठा लेकर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा माना गया है। और इससे आगे मैं बात करूं, कई बार ऐसा भी रहता है, कई बार इस राशि के जो जातक हैं या रात में नींद डिस्टर्ब रहता है तो उस वक्त अगर अपने सर की साइड पानी रखा जाए किसी भी गिलास में, चाहे या बेड के साइड पे, जहां भी जिस डायरेक्शन में आपका सर है उस डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा पानी रखा जाए और सुबह उस पानी को किसी भी पेड़ या पौधे को दे दिया जाए तो ये उस वक्त अच्छा जो है माना जाता है। और हॉरोस्कोप की बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि मंगल अगर बुरे ग्रहों से प्रभावित रहता है और जैसे कि अगर हम मंगल के जो मित्र प्लैनर्स हैं, मित्र ग्रह हैं, अगर हम उनसे उनकी मदद लें तो वो भी प्रभाव जो है वो अच्छा रहता है। जैसे कि अगर हम बृहस्पति के प्रभाव की बात करें तो उस वक्त हम अगर घर के बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं तो उससे जो मंगल का इम्पैक्ट है वो भी अच्छा रहता है। और इस राशि के जातकों को चाहिए कि जब भी सूर्य ढलने के बाद गुड़ और गेहूं, इन जो चीज़ें हैं, इनका जो दान है ये नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मंगल से जो अच्छा प्रभाव है ये ले सकते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि मंगल अगर बुरे ग्रहों से प्रभावित होता है, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें चाहे थोड़ा प्रभाव जो है अच्छा वो मिलना शुरू होता है।
जी जगजीत जी, और लिसनर्स को बता दें कि वो भी अगर चाहें तो आपसे बातचीत कर सकते हैं अपने हॉरोस्कोप्स के रिगार्डिंग, जो भी उनके सवाल हैं आपको फोन पर डिस्कस कर सकते हैं या आपसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं या फिर हमें ईमेल के जरिए या टेक्स्ट के जरिए इस प्रोग्राम में भी भेज सकते हैं ताकि हम अपना प्रोग्राम में उनके डिटेल्स को शामिल करके उनके हॉरोस्कोप्स को आपसे रीड करवा सकें। तो जगजीत जी से कॉन्टेक्ट करने के लिए उनका नंबर है 02103901113। ईमेल का पता है info@astrologerjagjeet.com।
हमने जग की है जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। प्रभु की अद्भुत, प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। यहाँ सुख से सौगुनी पीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। तो एक सुखी यहाँ लाखों में, गिन गिन हर तकदीर देख भी एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस।
हम जगजीत जी से बातचीत कर रहे थे साइंस स्टार्स के बारे में, लिसनर्स ने जो हमें रिक्वेस्ट भेजी थी। तो जगजीत जी, आज के इस प्रोग्राम में आप हमें दूसरा कौन सा साइंस स्टार के बारे में बात करने वाले हैं?
जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा कर्क या कैंसर के विषय में। अगर हम इस राशि का जो स्वामी है यानी कि स्टार साइन का जो स्वामी है वो है चंद्र यानी कि मून। मून जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। अगर मैं साइंटिफिकली भी बात करूँ तो अर्थ के सबसे जो नज़दीक माना गया है चंद्र को माना गया है, और चंद्र का हमारी ज़िंदगी में इतना महत्व है हर धर्म में कि हम जब कोई व्रत भी करते हैं तो चंद्र को देख के औरतें जो करवा चौथ का व्रत है ये पूर्ण करती है। ईद का चांद देखा जाता है, तो चांद का जो महत्व है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा है। और अगर मैं साइंटिफिकली जैसे मैं बात कर रहा था तो कई बार ऐसी बातें चल पड़ती हैं जब कहीं सम्मेलन होता है कि जो चंद्र है तो उसका हमारी ज़िंदगी में इस तरह से प्रभाव है कि चंद्र की पोजीशन से ही समंदर में लो टाइड हाई टाइड होता है और हमारी बॉडी में भी मैक्सिमम पानी है, हम पे भी कभी उनका जो प्रभाव है ये अधिक माना जाता है। अगर मैं ज्योतिष की बात करता हूँ तो चंद्र भी बहुत सारी चीज़ों को जो रिप्रेजेंट है ये करता है। चंद्र जैसे कि मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा हमारी लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत से जो एलिमेंट दूसरे हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और होरोस्कोप में देखा गया कि अगर चंद्र बुरे ग्रहों से प्रभावित रहता है और चंद्रमा जिस भाव में रहता है तो वहाँ मदर की कई बार तबीयत अच्छी नहीं रहती, और खुद के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि मून डेबिलिटेट हो तो नेगेटिव फीलिंग्स इंसान में बहुत ज़्यादा रहती हैं। और अगर चंद्र अच्छे ग्रहों से प्रभावित रहता है जैसे बृहस्पति के साथ तो गज केसरी जो योग है ये माना जाता है, वो योग जो रहता है उसमें ऐसा भी देखा गया है कि इंसान को हेल्थ और वेल्थ दोनों भरपूर जो ज़िंदगी में है ये मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि हर समय जो समय एक सा ही रहता है, अपडाउंस जरूर रहते हैं, जैसे कि वर्षफल में प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं तो भाई इस बार अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर हम इस राशि के इस बारे में बात करें जैसे कि चंद्र की बात चल रही है, तो इस राशि के जातक अगर कभी भी कोई कार्य शुरू करते हैं चाहे वो बिजनेस रहे या जॉब रहे, अगर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस राशि के जातक जितनी अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं या मदर के कहने में रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मदर की हेल्थ खराब है तो उनकी केयर करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से जो अच्छा फल है ये जरूर प्राप्त रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि चंद्र जो है बुरे भाव में रहता है या बुरे ग्रहों से दृष्ट रहता है, अगर उस वक्त हम दूध चावल पानी इन चीज़ों का कहीं ना कहीं डोनेशन करते हैं दान करते हैं तो उस वक्त चंद्र का जो प्रभाव हमें अच्छा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और उसका जो प्रभाव है ये बुरा हमें मिलता है। इसलिए उस वक्त हमें दूध चावल पानी इन चीज़ों का जो दान है ये नहीं करना चाहिए। और जब भी कभी ऐसा रहता है कि चंद्र बुरे ग्रह से प्रभावित है या अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, तो उस वक्त अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनसे अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे घर में बैठकर या किसी धर्म स्थान पर जाके करते हैं, तो ये भी उस वक्त काफी अच्छा माना गया है। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा रहता है कि चंद्र की जब पोजीशन अच्छी नहीं रहती या भाव जिस भाव में रहता है वो अच्छा नहीं रहता या डेब्लिटेट रहता है चंद्रमा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डेब्लिटेट के साथ साथ बुरे ग्रहों से प्रभावित रहता है और रात के समय जो नींद है ये डिस्टर्ब रहती है। तो उस वक्त अगर अपने घर में जो भी बेड है जहाँ सोते हैं, अगर उनके जो बेड की लेग्स यानी के पांव रहते हैं उसमें अगर सिल्वर का नेल लगाया जाए तो वो उस वक्त काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। और जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, देखा गया है कि अगर चंद्र अच्छे ग्रहों से प्रभावित रहता है या बृहस्पति का साथ रहता है या दूसरे अच्छे ग्रहों का साथ रहता है और इंसान बिजनेस करता है, अगर वो बिजनेस नया शुरू करके मेरे कहने का भाव है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो पैतृक हमारे जो फादर या ग्रैंडफादर जो बिजनेस करते थे वो बिजनेस छोड़कर अगर दूसरा बिजनेस करते हैं तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जो कि अगर हम पैतृक जो बिजनेस है यानी जैसे कि हमारे फादर या ग्रैंडफादर करते रहे हैं उस बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला जो बिजनेस है ये रहता है। और इस राशि के जातक कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कई बार जो चंद्र का प्रभाव है अच्छा नहीं रहता है या लोग इकट्ठे जुड़कर नहीं बैठ पाते, तो उस वक्त अगर घर में वर्षा का जो रेन वाटर है, वर्षा का जो जल है, किसी भी बर्तन में डालकर घर पे कहीं भी स्थापित किया जाए तो ये बहुत उस वक्त अच्छा माना जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस राशि के जातक या इस स्टार साइन के जातक अगर इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, कहीं ना कहीं हम चंद्रमा से अच्छा प्रभाव अपनी ज़िंदगी में लाने की जो कोशिश है ये ज़रूर कर सकते हैं।
जी 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 जी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करते हैं कि जिन भी लिसनर्स का ये सवाल रहा होगा उन्होंने सुन लिया होगा। मगर अगर उनको इन क्वेश्चंस के बारे में, इन सवालों के बारे में और भी डिटेल में आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपसे कभी भी वो संपर्क कर सकते हैं और आप कोशिश करेंगे कि उनका जल्द से जल्द हम लोग आने वाले प्रोग्राम्स में आंसर दे पाएं। अदरवाइज अगर उनको प्रायोरिटी पे आंसर चाहिए तो आपसे अपॉइंटमेंट लेकर भी उस पर डिस्कशन की जा सकती है। तो जगजीत जी से आप बात करने के लिए आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, उनका फोन है, उनका लैंडलाइन है, सो देर आर सो मेनी वेज एक्चुअली कि अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत करके अपने बारे में, अपने हॉरोस्कोप्स के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं। जगजीत जी का लैंडलाइन है 09278754 और www.astrologerjagjeet.com उनकी वेबसाइट का पता है।
सुनो रे प्यारे,
ज
का सेगमेंट हमने डेडिकेट किया है साइंस स्टार्स के ऊपर, क्योंकि लिसनर्स के काफी देर से हमारे पास सवाल आ रहे थे कि उनको अपने साइंस स्टार्स के बारे में जानना है. तो जगजीत जी, आज का जो हमारा इस सेगमेंट का, मेरे ख्याल से ये हम लोग लास्ट ही इस प्रोग्राम में शामिल कर पाएंगे जो भी हमारा साइंस स्टार रहेगा, कौन सा साइंस स्टार है जो आप हमें जिसके बारे में जानकारी देंगे?
जी हाँ, ये जो स्टार साइन है ये है लियो, यानी कि सिंह. अगर हम सिंह के विषय में बात करते हैं तो इसका नाम ही सिंह है, यानी कि इनको, इनका जो स्वामी है वो है सूर्य
जी.
और अगर मैं होरोस्कोप की बात करता हूँ तो सूर्य का जो होरोस्कोप में है, एक राजा का जो पद है ये माना गया है. और अगर मैं इससे आगे भी बात करता हूँ, अगर देखा जाए कि सूर्य हमारी बहुत सारी चीज़ों को जो रिप्रेजेंट है ये करता है, सूर्य हमारी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है. अगर इमेजिन किया जाए कि इस धरती पर सूर्य का प्रकाश ना हो, मैं तो ये सोचूंगा कि चारों तरफ ना हरियाली रहेगी, हर तरफ अंधकार रहेगा. इवन कि उसकी जो गर्मी है, तपश नहीं रहेगी तो चारों तरफ बर्फ रहेगी, तो हम इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त जीवन क्या रहेगा
जी.
इसलिए सूर्य का जो महत्व है जिंदगी में बहुत बड़ा है. होरोस्कोप की बात करता हूँ तो सूर्य जो है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है
जी.
ये देखा गया कि अगर सूर्य अच्छे ग्रहों से प्रभावित रहता है और उस वक्त जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, ईमानदार रहता है, हमेशा सच्चाई का साथ देता है, तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति जरूर करता है. और अगर देखा गया कि सूर्य अच्छे ग्रहों से प्रभावित है और इंसान अच्छे कार्य नहीं करता, तो उस वक्त जो सूर्य का प्रभाव है वो अच्छा नहीं रहता. ये भी देखा गया है कि सूर्य अगर अच्छे ग्रहों से प्रभावित रहता है, या सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बढ़िया माना गया है दूसरे ग्रहों के साथ, या सूर्य या शनि का, जबकि ये एंटी प्लैनेट्स माने गए हैं, पिता और पुत्र, अगर ज्योतिष की बात करूं तो दोनों का आपस में जो विरोध है ये रहा है, लेकिन फिर भी अगर सूर्य पर अच्छे ग्रहों से प्रभावित है और शनि भी, और इनका आपस में योग कहीं ना कहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को मेडिकल जो लाइन है उसमें बहुत ज्यादा जो बेनिफिट है ये रहता है. तो और भी चीजें हैं जो कि सूर्य के प्रभाव में रहती है. तो इस राशि के जातक जितना सत्य का साथ देते हैं, किसी का अहित नहीं करते, उतना ही उनके लिए अच्छा रहता है. और इस राशि के जातक, कई बार ऐसा होता है कि सूर्य अच्छे ग्रहों से प्रभावित नहीं है, तो उस वक्त अगर मीठा खाकर कोई कार्य शुरू करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा रहता है. और इस राशि के जातक अगर कई बार बिजनेस में या जॉब में कई बार प्रॉब्लम रहती है, तो उस वक्त अगर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में कहीं दान या दक्षिणा दी जाए, या वहाँ पे दूध से बनी हुई पुडिंग दी जाए, या वैसे ही डोनेशन दी जाए, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ये माना जाता है. और ये भी देखा गया है कि अगर सूर्य कहीं क्रूर ग्रहों से प्रभावित है और अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो उस वक्त अगर भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की जाए अपने अच्छे के लिए, तो ये बहुत अच्छा जो है वो माना गया है. और इस राशि के लिए जो उत्तम दान है ये अखरोट और नारियल, अगर इन चीज़ों का दान कहीं हम धर्म स्थान पर जाके करते हैं तो ये बहुत बढ़िया माना गया है. और अगर अपने साथ चांदी स्थापित करते हैं, मेरे कहने का भाव ये है कि अगर चांदी की बैंगल के शेप में या चेन के रूप में अगर हम पहनते हैं, तो उस वक्त भी जो सूर्य का प्रभाव है वो हमें अच्छा मिलता है. और इससे आगे अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा रहता है कि जो सूर्य है बुरे ग्रहों से प्रभावित रहता है या राहु से प्रभावित रहता है, जैसे कि सूर्य को हमेशा राहु से ही ग्रहण लगता है, राहु को धुआं भी माना गया, तो उस वक्त अगर अपने जो ससुराल है उनसे अगर संबंध अच्छे रखते हैं, तो जो वो बुरा प्रभाव है कहीं ना कहीं हद तक उस अच्छे में कन्वर्ट होने की जो कोशिश है वो जरूर रहती है.
जी जगजीत जी, और घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम अपने प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेके जाएं और आने वाले सप्ताह में अपने लिसनर्स के लिए ढेर सारे जवाब लेकर आएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए, और लिसनर्स से भी इजाज़त चाहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि लिसनर्स ने हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से सुना होगा, और अगर उनके पास फिर भी कुछ उनको हमारे जो आज हमने डिस्कस किया है प्रोग्राम उसके ऊपर उनको कुछ और जानकारी चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम के जरिए भी बात कर सकते हैं, और आपको आपकी वेबसाइट के जरिए भी ढूंढा जा सकता है। तो जगजीत जी, इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ अगले सप्ताह फिर से हम लोग इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे और हॉरोस्कोप्स को भी हम लोग अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। नमस्कार।
नमस्कार।
संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार।